جنرل کیانی کو اور جنرل پاشا کو اور پورے پاکستان کی جو ہائرارکی تھی ان کو سارا علم تھا اور یہ سارا ڈرامہ تھا, اور پریزیڈنٹ اوباما نے بھی ڈرامہ اپنی طرف سے کیا. مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں ایک لحاظ سے تو سیاسی کے سیاسی لحاظ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کو نیچے دکھایا جائے امریکن ڈومیسٹک پالیٹکس میں, اور دوسری طرف پاکستان کو بھی ایک لحاظ سے ایک بنانا ریپبلک کی طریقے سے پیش کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ دونوں بالکل حق اور بالکل یہ چیزیں حقائق پر مبنی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ خود امریکہ نے جو باتیں کہی ہیں آفیشیل لیول پر اور جس طریقے سے حقائق ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹرز آئے, اور پاکستان نے بالکل, اگر پاکستان کو یہ علم ہوتا تو اپنے جنرل کیانی کو یہ پتا ہوتا, جنرل پاشا کو یہ علم پتا ہوتا, تو پھر تو آپ کو خود کو یہ پتا ہو, ہمیں یعنی ساری دنیا کو یہ پتا ہوتا کہ بھائی پھر تو بڑی سختی ہوتی. یعنی پاکستان کو سب سے بڑی جو شرمندگی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ اسامہ بن لادن یہاں ہے, اور اگر یہ علم ہوتا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی سختی نا پاکستان کو ہوتی, یعنی جو شرمندگی پاکستان کو اٹھانی پڑی اس وجہ سے کہ پاکستان کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو صرف ڈرامہ تھا سارا کچھ, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے, لیکن جنرل صاحب معذرت کے ساتھ اس طرح کی جو رپورٹس ہیں, وہ تو پہلے بھی آتی رہی ہیں, اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسامہ بن لادن کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ایسے لوگ بھی ہیں فوج کے اندر اور پاکستانی ایجنسیز کے اندر جو اسامہ بن لادن کے خلاف ہیں. تو اس میں کہاں تک حقیقت ہے یہ تو نہیں معلوم, لیکن اس طرح کی باتیں تو شروع ہی سے ہوتی رہی ہیں.
یہ ہو سکتا ہے, دیکھیے نا کہ آپ ایک لحاظ سے ذاتی لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ امریکنز نے بڑی ذاتی کی وغیرہ وغیرہ, یا اسامہ بن لادن کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی ہو, یا چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے بعض آئی ایس آئی کے لوگ کام بھی کرتے رہے ہیں, امریکن سی آئی اے بھی کام کرتا رہا ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کی ذاتی لحاظ سے کوئی ہمدردی ہو, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. لیکن ابھی تو بات کچھ اور ہے, بات تو دراصل یہ ہے کہ یہ ایک انہوں نے ایک ایسا نیا قصہ بیان کیا, ایک نئی کہانی جو کہ میرے تو خیال میں بالکل حقیقت پر مبنی نہیں ہے, اور اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اور امریکہ پاکستان کو نیچے دکھایا جائے, اور ایک لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور یعنی اس میں کئی تضاد ہیں, ایک نہیں کئی تضاد ہیں. تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں. بہرحال anyway, اور یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کیا مقصد کیا ہے. اور
اس پہ جنرل صاحب ہم آگے جا کے جی بات کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے, تو ایسے وقت میں یہ رپورٹ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے کامران بخاری صاحب نے, اور ڈیموکریٹک پارٹی کے طاہر روہیل صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان دونوں کو بھی ہم سننا چاہیں گے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد کئی کتابیں چھپی ہیں, کئی رپورٹس جو ہیں وہ اس جو ایبٹ آباد ریڈ ہے اس کے حوالے سے سامنے آئی ہیں, یہ حالیہ جو رپورٹ ہے یہ بتائیے گا کہ اس میں نئی باتیں جو ہیں وہ کیا ہے, نئی انکشافات اس میں کیا کی گئی ہیں؟
یہ شناز پہلی دفعہ یہ بات کسی ورلڈ ریناؤنڈ صحافی نے لکھی ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت جو جنرل کیانی اور ان کے آئی ایس آئی کے جو ہیڈ تھے جنرل پاشا, ان کو ان کی مدد سے یہ ایبٹ آباد کا ریڈ ہوا. یہ جو پہلی دفعہ ہے, اور یہ جو بات ہے اس کو اس پہ بہت لوگوں کو کافی عرصے سے شک تھا, کیونکہ اس کی جو آلٹرنیٹ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے مکان کو, جس کی 18 فٹ اونچی دیواریں ہیں, 13 انچ کی 2 انچ کی دیوار ہے, وہ کاکول اکیڈمی سے بومی سے بھی کم کے اندر ہے, اور وہاں جو ہے ساتھ میں بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے, اور وہاں پہ پاکستان کی قیادت جو ہے وہ کاکول میں جب پاسنگ آؤٹ پریڈ وغیرہ ہوتی ہے تو بہت ساری ایجنسیاں اس ایریا کو سیکیور کرتی ہیں, وہاں وی آئی پیز آتے جاتے تھے. تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کسی انٹیلیجنس کو, پولیس کو, کسی جو وہ چھاونی ہے اس میں جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں اور اس میں جو افسران ہیں ان کو ایسا پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں کون رہ رہا ہے. اور اس سے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جن کی ایکسپلینیشن جو تھی وہ ملنا مشکل تھی. اور ایک عام آدمی جب یہ ساری باتیں سنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ موسٹ لائکلی زیادہ پرابیبلٹی اس بات کی ہے کہ پاکستان انٹیلیجنس اور پاکستان کی جو سروسز ہیں ان کے ہائیسٹ لیول کے اوپر اسامہ بن لادن کو رکھنے کا کوئی مقصد ہوگا, یا ان کی جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے افغانستان میں اور امریکہ سے تعلقات وغیرہ میں, اس میں اس کی کوئی اہمیت ہوگی, اس لیے اس کو وہاں رکھا گیا ہوگا. اس میں بہت ساری جو بہت سارے جو سرکمسٹینشل چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ جوڑ کے سوچیں تو یہی ایک بات سامنے آتی ہے, پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی نااہلی کہ وہ ایک دنیا کا موسٹ وانٹیڈ آدمی جو ہے وہ ان کی ناک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلا, وہ تو بہت وہ ماننے میں وہ نہیں آتی. اور اب یہ ہے کہ یہ جو صحافی ہیں جنہوں نے یہ انویسٹیگیشن کی اپنے طور پہ, وہ انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں, ان کا کسی حکومت سے تعلق نہیں ہے, پاکستان کو بدنام کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. وہ ان لوگوں کا کام تو حقائق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لانا ہوتا ہے, اور لندن ریویو آف بکس میں انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے وہ بڑا ڈیٹیل آرٹیکل ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایگزیکٹ اس کی جو ڈیٹیل ہیں کہ کیسے ریڈ ہوا اور پہلے کس بات کی خبر ہوئی اور پہلے کیا بات ہوئی اور اس کے بعد دوسرے اس پہ کیا ہوا, پھر تیسرے مرحلے پہ کیا ہوا, چوتھے مرحلے پہ کیا ہوا, وہ جو ساری ڈیٹیل ہے اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے, مختلف جو بیانیے ہیں ان میں فرق ہو سکتا ہے. لیکن دنیا کو پتا ہے کہ وہ آدمی وہاں رہ رہا تھا اور وہ اس کا کمپاؤنڈ جو تھا وہ انیوژل تھا, باقی مکانوں جیسا نہیں تھا. اس کے آگے پیچھے کے جو ہے وہ درخت کاٹے گئے, وہ کتنے درخت کٹوائے شہر کی.
بالکل اس رپورٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ اسی طرح کی بات کی گئی ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے اس رپورٹ کے مطابق وہ 2006 سے پاکستان کے پریزنر تھے, اور بعد میں پھر اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کے ایک سابق عہدیدار نے پیسے لے کر امریکی خفیہ ایجنسی سے ان کو یہ پوری معلومات جو ہیں اسامہ بن لادن کے حوالے سے وہ مہیا کی ہے. کامران بخاری صاحب, بتایا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں, یہ جو نئی انکشافات کی گئی ہیں اسامہ بن لادن کی پاکستان کی موجودگی اور پھر ان کے خلاف جو آپریشن کیا گیا امریکہ کی جانب سے, آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں, کتنی حقیقت آپ کو نظر آتی ہیں اور اس میں جو باتیں کی گئی ہیں اس میں آپ کو کتنا وزن نظر آتا ہے؟
دیکھیں شہناز, یہ جو سورس ہے اس انفارمیشن کا وہ اس شخص کا نام ہے سیمور ہرش.
جی,
سیمور ہرش جو ہیں وہ بظاہر جو ہے وہ بڑے ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں, لیکن ان کا ایک بڑا جو ہے وہ فالٹی ٹریک ریکارڈ رہا ہے ان ٹرمز آف جو ہے یہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں, کچھ سال پہلے اور انہوں نے ملٹیپل جو ہے اپنا اوکیشنز پہ یہ خبر دی تھی کہ کبھی کہتے تھے کہ امریکہ کے جو اسپیشل آپریشنز کمانڈ کے جو فورسز ہیں وہ ایرانی تنصیبات پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں, پروگرام بنایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اسرائیلی جو ہے حملے کی بھی جو ہے انہوں نے کو خبریں دیں, وہ ساری کی ساری خبریں بالکل غلط ثابت ہوئی ہیں. تو ان کا جہاں تک یہ ریسپیکٹیبل ہیں ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ان کو سنسیشنل قسم کی جو خبریں ہیں وہ دینے کی عادت بھی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے, پھر یہ ہے کہ ٹریک ریکارڈ سے ہٹ کے ہمیں ریلی اس کو باریکی سے اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ انفارمیشن ان کے پاس کہاں سے آئی, انفارمیشن دینے والے کون ہیں, ان کے مفادات کیا ہیں, وہ ذاتی مفادات پہ جو ہے اپنا چل رہے ہیں, کس حد تک چل رہے ہیں ذاتی مفادات پہ, کیا ان کو کسی نے جو ہے کوئی اور کسی اور کے مفادات کی پرسوٹ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھنا بڑا ضروری ہے. कबल इसके कि हम उनका जो रिवायत है, जो उनकी जो अपना जो नरेशन है, वो हमें नरेटर से की जो आइडेंटिटी है और जो नरेशन का प्रोसेस है उसको डीकंस्ट्रक्ट किए बगैर जो है हमें उसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये खबरें आ कोई ऐसी बात बता क्यों रहा है, उसका क्या मकसद है, क्या उसके मफादात हैं। तो ये मैं तो जो है
जनरल तलत साहब कह रहे हैं कि ये शायद पाकिस्तान और अमेरिका को नीचा दिखाने की कोशिश जो है इस वक्त हो रही है। दोनों कंट्रीज़ के बज़ाहिर ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इस वक्त, उनकी नज़र में इसके पीछे कुछ मोटिव्स जो हैं वो मौजूद हैं।
ये तो कहना मुश्किल है कि जो है मैं ये नहीं कहता कि जनरल तलत मसूद जो हैं वो सही नहीं कह रहे, लेकिन उस तक वो कंक्लूड करने के लिए भी हमें बहुत तहकीक की ज़रूरत है और बहुत ही बारीकी से तहकीक करने की ज़रूरत है और स्पेकुलेशन से दूर रहने की ज़रूरत है। और फिर ये भी हमें देखना है कि ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसको ये पहली दफ़ा नहीं उछाला जा रहा, ये बार बार उछाला गया है जब से ओसामा बिन लादन की हलाकत हुई है। हाल ही में कार्लोटा गाल ने अपनी किताब में कहा, फिर साबिक ISI के जो सरबराह थे जनरल असद दौरानी उनका एक इंटरव्यू है अल जजीरा से। लेकिन यह कि हमें यह देखना है कि इस किस्म की इंफॉर्मेशन किसके पास हो सकती है और वो क्यों इसको शेयर करना चाहेगा और क्या मुहर्रकात हैं। फिर यह है कि जर्नलिस्ट से बहुत सारे लोग बातें करते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, किन हालात में बात की गई है, क्या जो उनके अपने सीमोर हर्ष के सोर्सेज हैं क्या वो ऐनी शाहिद हैं, क्या वो उस वक्त जो है उस ऑपरेशन में जो है उनका किरदार रहा है या वो किसी सेकंड थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन को रिसाइकल कर रहे हैं। सो बगैर इस सारी छानबीन के मैं तो नहीं समझता कि हम किसी भी नतीजे पे पहुंच पाएंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब आपका। यमन के मामले पर दोबारा हम आपसे बात करना चाहेंगे, कुछ देर बाद दोबारा हम आपको कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच। और जनरल तलत मसूद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये रिपोर्ट जो है अगर आप देखें तो काफ़ी जो मीडिया है उसमें इसको कवरेज दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ना इस रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है ना उसकी तरदीद की गई है ना इसकी तारीफ की गई है, तो ये इसकी क्या वजह आप देखते हैं? क्योंकि इससे फिर काफी शकों के शुभात जो हैं वो जन्म लेते हैं।
इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है मेरे ख्याल में इसको स्टडी कर रही होगी और मेरे ख्याल में इसके बाद एक केयरफुल रिस्पॉन्स इसका आएगा जरूर और इस पर वो तबसरा जरूर करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ एक दो दिन के बाद या शायद कल करें या परसों करें जी। करेंगे जरूर, इसलिए कि ये बात को अगर खामोश रह गए तो इसका मतलब ये है कि वो जो कहा गया है वो सही है और इस पर चूंकि सारी दुनिया में बातचीत हो रही है मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए ये करना कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में देना जरूरी है, वरना पाकिस्तान में ऐसे लगेगा कि जो कुछ उन्होंने फिर कहा है वो बिल्कुल सही है।
ठीक, ओके। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑपरेशन ओसामा बिन लादिन के खिलाफ किया गया कहा जा रहा है कि इसका पता पहले से था जनरल कियानी को और पाशा को, तो ये यहाँ पे ये फिर सवाल जहन में उठता है कि फिर इस पूरे मामले में अमेरिका जो है वो क्यों पाकिस्तान को एक विलन के तौर पर उसने उसको शो किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह इसकी हो सकती है?
अमेरिका ने पाकिस्तान को विलनाइज जो किया उसकी एक तो मीडिया के ऊपर एक डायलॉग या एक नैरेटिव या एक आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट था, उसमें अमेरिका की ख्वाहिश पाकिस्तान से ये थी कि वो जल्दी से वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान और बाद में जल्दी से नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाकों को सिक्योर करें कि वहां से लोग जाके अफगानिस्तान में इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे और पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे थे। एक तो ये पॉलिसी डिफरेंस जो था वो दोनों ममालिक का था। दूसरा जो इस आर्टिकल में सीमोर हर्ष साहब ने भी ये ऑब्जर्वेशन किया है या ये लिखा है कि एक तरफ तो ये मीडिया में शोर हुआ हुआ और एक किस्म का एक आर्गुमेंट रख के दोनों एजेंसियां अपने अंदर जिस हद तक एक दूसरे से तआवुन कर सकती थी वो भी कर रही थी और काफी हद तक अमेरिका को जो तावन पाकिस्तान से चाहिए था और जो पाकिस्तान की जो जरूरियात थी उस सिलसिले में एड वगैरह प्रोवाइड करना और बाकी असिस्टेंस इंटेलिजेंस की प्रोवाइड करना वो अमेरिका की तरफ से भी प्रोवाइड हो रही थी। दूसरा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये एक बात जो है वो जरूरी है कि वो कहें कि जी मीडिया में आप देखें कि हमारे अवाम जो हैं या हमारे सियासतदान जो हैं उनकी एक लिहाज से डिफरेंट कहानी है और वो ये नहीं चाहते कि अमेरिका का इस तरह से साथ दिया जाए, अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया इससे पहले और अमेरिका से हमारे पाकिस्तानियों के बहुत गिले हैं और ये सियासतदान और ये सियासी फजा ऐसी है जिसकी वजह से हम नॉर्थ वजीरिस्तान में मसलन नहीं जा सकते और तालिबान के खिलाफ ऑल आउट वॉर जो है वो नहीं कर सकते, अभी हालात साजगार नहीं है। तो ये बात जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो अमेरिका से ये बात इस तरह की करके और अपने इस डिसीजन को कि अभी हमने नॉर्थ वजीरिस्तान या साउथ वजीरिस्तान नहीं जाना वो उसको अपने लिए एक प्रोवाइड एक कवर प्रोवाइड करते थे, एक बहाना प्रोवाइड करते थे और जो उनकी नजर में पाकिस्तान के मफादात हैं या उनकी नजर में मैं कहूंगा वो पाकिस्तान के अवाम के शायद मफादात ना हो या पाकिस्तान की रियासत के लॉन्ग टर्म के वो मफादात ना हो, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसियों में जो अफसरान जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने एक उनकी एक माइंड सेट है अफगानिस्तान के बारे में तालिबान को इस्तेमाल करना और उनसे लड़वाना और उनको कंट्रोल में रखना जो उनसे बात नहीं हो सका, वो उनकी जो उस तरह की माइंड सेट थी वो उसको अपनी वही पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये आपको पता ही है कि उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ और अल्टीमेटली पाकिस्तान आर्मी जो है वो ज़र्बे अज़ब के तौर पे नॉर्थ वज़ीरिस्तान में गई और उन्होंने वही किया उनको आज से 10 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन ये डायलॉग में या अमरीका से बातचीत करने में ये उनके लिए मुफीद था कि वो ये कहते रहे कि हमें पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की अवाम की जो है वो तायद हासिल नहीं है जितनी अमरीका चाहता है।
ओके डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब आप हमारे साथ रहिए और जनरल तलत मसूद साहब आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आज भारतीय पार्लियामेंट में जो भारतीय वजीर दाखला है रजनाथ सिंह उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसे ठोस शवाहिद इस हवाले से मौजूद हैं कि जो दाऊद इब्राहिमी हैं वो पाकिस्तान में हैं इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपनी भरपूर कोशिश जो है वो करेंगे ताकि दाऊद इब्राहिमी जो है उनको भारत लाया जा सके और उसके बाद उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जा सके। ये बताइएगा कि इस वक्त जो दावे हो रहे हैं भारत की जानिब से दाऊद इब्राहिमी की पाकिस्तान में मौजूदगी से मुतल्लिक पाकिस्तान का मौकफ इस वक्त क्या है इस हवाले से?
पाकिस्तान तो हमेशा यही कहता रहा कि हमें नहीं पता और ये पाकिस्तान में नहीं है दाऊद इब्राहिम, बल्कि इंडिया के भी मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्सा पहले ये कहा था मेरे ख्याल में एक हफ्ते ही पहले कि हमारे इल्म के हमारे नॉलेज के मुताबिक ये दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, लेकिन अब आपने जैसे बताया कि ये कल उन्होंने या आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है तो मेरे ख्याल में उनको अगर इल्म है तो वो फिर पाकिस्तान से रब्ता करें और उनसे कहें कि हमें पता लगा है वो कराची में है या हैदराबाद में है या कोई और जगह पर है तो किस जगह पर है, आप उनको जब यहाँ तक पता है कि वो पाकिस्तान में है तो उनको ये भी जरूर इल्म होगा कि कहाँ है, और अगर पाकिस्तान जिस तरीके से हमेशा लाइल्मी में जाहिर कर रहा है तो उनको ये बताएं कि भाई आप तो लाइल्म होंगे लेकिन हमें तो पता है, जैसे अभी उसामा बिन लादेन की भी बातें हो रही थी तो अगर अमेरिकन को पता था कि वो वहाँ यहाँ है तो फिर पाकिस्तान को बता देते कि यहाँ है पाकिस्तान अहमदाबाद में, लेकिन चूंकि एक दूसरे पर एतमाद नहीं है इसलिए वो बताते नहीं है, तो ये सारे चक्कर है क्योंकि उनको फिर ये पता लग जाएगा कि उनको किसने बताया है कि ये दाऊद इब्राहिम कहाँ बैठा हुआ है, तो अपने एजेंट्स के बारे में बताना नहीं चाहते और पाकिस्तान मेरे ख्याल में उसको शायद इतनी कोई ख्वाहिश भी नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ाए इंडिया के, हालांकि उसने किया तो है वहाँ और बड़ा गजब किया है और अगर वो मुजरिम है तो फिर उसकी सजा मिलनी चाहिए और ये मेरे ख्याल में ताल्लुकात पर भी बड़ा मबनी होगा कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो जिस किस्म के हालात हैं जिस किस्म का तनाव है मैं नहीं समझता कि ये केसेस चाहे वो मुंबई ट्रायल हो या ये दाऊद इब्राहिम का केस हो या समझौता एक्सप्रेस हो कि कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ेगी।
ठीक है, बेहद शुक्रिया जनरल तलत मसूद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आइंदा भी आपसे बात होगी। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों जो ज़कीउर रहमान लकवी है उनको पाकिस्तान ने ज़मानत पर रिहा किया, उसके बाद और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि जो इनफ शवाहिद जो हैं एविडेंसेस वो नहीं थे कि जिनकी बुनियाद पर उनको मज़ीद कैद में रखा जाता या उनको कोई सज़ा दी जाती, जबकि जो अगर यूएन की जो वेबसाइट है उस पे अगर आप जाएं तो ज़कीउर रहमान की जो तारीफ़ की गई है तो एक बैनुल अक्वामी दहशतगर्द के तौर पर की गई है, जिन्होंने ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दीगर कई ममालिक जिसमें इराक भी शामिल है, चेचनिया शामिल है, वहाँ जाके भी कहा जाता है कि दहशतगर्दी कार्रवाइयों में ये मुलव्वस रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सज़ा ना देना, ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, या जो मुल्क आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि इनको हमारे हवाले कर दिया जाए उनके हवाले ना करना, इससे पाकिस्तान के इमेज पर क्या असर होता है, और फिर ऐसे हालात में जिस तरह हमने देखा है कि भारत ने यूएन से भी मुतालबा किया है कि वो इस मामलात में अपना किरदार अदा करे, तो यूएन क्या किरदार अदा कर सकता है?
कि पाकिस्तान की बहुत बदनामी होती है इस मसले के ऊपर, और इसमें पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत जो है वो काफी हद तक बेबस है। आपको याद होगा कि जब ये जो बॉम्बे का सानिया हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो शाह महमूद जो कुरैशी थे वो हिंदुस्तान में थे, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात उससे पहले उस वक्त जो थे वो बहुत अच्छे थे, और बहुत सारे मसाइल के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वो तकरीबन समझौता करने के करीब लग रहा था कि आज के हैं, उनकी जो डिफरेंसेस थे वो टेक्निकल नोयत के थे, सियाचिन में थे और बाकी जो बॉर्डर के और इश्यूज हैं उन तक महदूद थे। तो जब इंतला हुआ तो शाह जो है वो अपना समूह लेके रह गए और उनको उजलत में वहां से अब वापस आना पड़ा, और उस वक्त के जो सदर थे सदर जरदारी उन्होंने उनके लिए ये एक नई बात उनको बहुत परेशानी हुई, और उन्होंने ये वादा किया इंडियन साइड से कि उस वक्त के जो आईएसआई के हेड थे जनरल पाशा वो उनको भेजेंगे और वो पाकिस्तान की तरफ से मुतमईन करेंगे हिंदुस्तान को कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। इससे पता चलता है कि उस वक्त की जो सिविलियन क्यादत थी वो इसमें किसी तरह से भी मुलव्वस नहीं थी, बल्कि उनको बताया नहीं गया और उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। महमूद कुरैशी वापस आ गया, उसके बाद से पाकिस्तान की दुनिया में इतनी बदनामी हुई है, सीएनएन की रिपोर्टिंग और फरीद जकरिया की जो फिल्म बनी उसमें एंटी शाहिदीन है, उसमें पाकिस्तान से होने वाली इंस्ट्रक्शंस जो है वो उनकी टेस्ट थी वो थी पाकिस्तान, वो जो मकान जहाँ से लोग बैठ के तो स्काइप के जरिए से और कंप्यूटर के जरिए से उस वक्त नई नई बात थी, वॉइस ओवर इंटरनेट की टेक्नोलॉजी थी जो थी उसके जरिए से लोगों ने बात की, वो सारी बातें जब सामने आई तो अब लखवी वगैरह इनको अगर इनसे पाकिस्तान को अपना हाथ छुड़ा के और पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपनी बदनामी कम करें, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास बहुत सारे ऐसे शवाहद हैं जो जाहिर है इन्हीं का करता धरता आदमी है और इन्हीं का आदमी है, तो उसको वो खुद जो है वो उनको चाहिए कि सजा दें। लेकिन आपको पता है कि लखवी जो है जिस तरह से जेल में रहे हैं वहाँ जो उनके पास इंटरनेट है टेलीविजन है और उनको अच्छा वीआईपी का ट्रीटमेंट दिया गया है, और वो जो पाकिस्तान का इंतहाई दायां बाजू है उसके बहुत चहेते हैं, और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां वगैरह हैं वो ये देखती हैं कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात जो हैं उनको बेहतर नहीं होना चाहिए जब तक उनके बकौल जो मसाइल हैं जो असल मसाइल हैं वो ठीक नहीं हो जाते, तो उसलिए ये समझते हैं कि अगर लखवी को सजा दें तो ये पाकिस्तान एक लिहाज से नीचा हो जाएगा हिंदुस्तान से। हालांकि अच्छी बात नहीं है, ये हर दूसरे तीसरे महीने लखवी को छोड़ते हैं और उसके बाद प्रोटेस्ट आता है दूसरी साइड से, और उससे पूरी दुनिया के न्यूज चैनल जो है वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, और पाकिस्तान की जो सफारती लोग हैं यहाँ कौंसलेट और लोग उसको उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता। इससे पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की तजारत को, पाकिस्तान की इक्तिसादियात को, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो नहीं होती और पाकिस्तान में जो ट्रैवल लोगों ने करना होता है वो नहीं करते। इस तरह की सारे जो नुकसान है अगर उनको जमा किया तो वो कहीं जा रहे हैं।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान की तरफ से ये मौकफ जो है वो पेश किया जाता है कि पाकिस्तान में तमाम अदालतें जो हैं वो आज़ाद हैं और वो हुकूमत की ताबे नहीं हैं, और ये के शवाहिद की बुनियाद पर तमाम फैसले जो हैं वो किए जाते हैं। तो प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाना चाहेंगे और डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी। अभी कल की बात है कि अमेरिका में जो दाखली सलामती के जो वज़ीर हैं जे जॉनसन, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि दाइश जो हैं वो अमेरिका के अंदर जो रिक्रूटमेंट के लिए समाजी वेबसाइट्स जो हैं उसका कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है। ये बताइए कि ये कितना बड़ा ख़तरा जो है दाइश वो साबित हो सकता है अमेरिका के अंदर अमरीकियों के लिए, और इस ख़तरे से निमटने के लिए अमेरिका इस मोड़ पे आपको कितना तैयार नज़र आता है?
अमेरिका ऐसे उसके लिए बहुत तैयार है और नासा की जो टेपिंग और जो अमेरिका की एजेंसियां इस मौजू पे काम कर रही हैं वो बहुत एक्टिव हैं। लेकिन ये कि इक्का दुक्का ये बच्चे जो होते हैं वो 18 से 20 साल की उम्र के बच्चे जो नजर में आ जाते हैं उनसे दाइश के प्रोपेगेंडा में वो लोग आ जाते हैं, उनके वालदेन को अगर आप सुने और उनके वालदेन की जो अपील से दाइश के लोगों को कि हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह करें, यहाँ शिकागो के सबर्ब में एक 18 साल का बच्चा जो था वो उसके वालदेन ने जिस तरह से अदालत में अपील जिस तरह से वो गए और जिस तरह से उनका दुख जो है वो अमेरिकन कम्युनिटी ने भी और पाकिस्तानी और मुसलमान कम्युनिटी ने जिस तरह से देखा वो एक बहुत दर्दनाक किसी भी फैमिली के लिए सूरत हाल है। और उसमें एक हद इस तरह का किसी बच्चे का बताया जाना मुमकिन है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर दाइश या इस तरह के लोगों की अमरीका में कोई पजीराई का कोई चांस अभी जो है वो फिलहाल नहीं है। पर हुकूमत या उनकी कोई वो खास फिक्र भी नहीं है, बस वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा वाकया ना हो।
ठीक, बेहद शुक्रिया डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और सामीन, अब हम प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट पे जाएंगे जिसमें हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबरा जनरल राहिल शरीफ के दौरे पाकिस्तान पर। हमारे साथ रहिएगा, इस वक्त हम लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे, लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा ने।
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
रुकेंगे या जारी रहेंगे, दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग, आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी,
व
What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
जी सामीन, वेलकम बैक. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग में हूं. आपकी मेज़बान शहनाज नफीस और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद अरसलान. और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबरा जनरल राहील शरीफ के दौरे पाकिस्तान पर. कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट एजेंडा जो है उसको लेके जा रहे हैं पाकिस्तानी रहनुमा, जिसको के रेस किया जाएगा वहाँ अफ़गान जो रहनुमाओं हैं उनके साथ मुलाकात में. इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है फ़ोन पे. वो हमारे साथ हैं, उन्होंने स्काइप पे आना था लेकिन इस वक्त कुछ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं स्टूडियो से स्काइप पे. तो फ़ोन लाइन पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और साथ ही मीर वैस अफ़गान अफ़गान उमूर के आप माहिर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं. दोनों मेहमानों को खुश आमदीद. और ब्रिगेडियर साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे. ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी वफद जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब और पाकिस्तानी फ़ौज के जो सरबराह हैं उनकी सरबराही में, ये बताइएगा कि कौन से ऐसे मामलात हैं, कौन से ऐसे मसाइल है कि जिसको ज़ेर बहस लाई जाएगा इन मुलाकातों में.
सबसे पहले सरे फरिस्त बात तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरक अकदार हैं उसमें से तो एक जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान की फौज ने उस पर बहुत सख्त मौकफ इख्तियार किया है और फॉरन ऑफिस से भी कहा है वो अफगानिस्तान के रस्ते से पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन जो राह पैदा कर रहा है इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है रिसर्च एंड एनालिसिस भी. और दूसरी बात जो है वो है ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब जो इसके नतीजे आ रहे हैं और इसके नतीजे में जो लोग अफगानिस्तान में चले गए और वहाँ से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं. और तीसरी बात जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरक मफाद में है और उसमें जो चल रही है वो ये है कि जो तालिबान के साथ दोहा में बातचीत हुई है उसके तनाजुर में कि ये बातचीत कहाँ तक आगे बढ़ सकती है और इस पर क्या प्रोग्रेस हो सकता है और क्या इसमें तहफ़ुज़ात जो सामने है उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आर्मी चीफ और दूसरी तरफ पर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, तो ये पॉलिटिकल और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो एक स्टेज पर है और एक किस्म की पॉलिसी और राय रखते हैं और अफगान हुकूमत को ये बावर कराना है कि हमारे दरमियान था अफगानिस्तान के मसले के बारे में, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में और अफगानिस्तान के जो हम मदद कर सकते हैं उनसे मदद ले सकते हैं और जो दोनों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन कॉमन इंटरेस्ट के पॉइंट है उस पर मुत्तफिक हैं और वहाँ पर भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी जो फजलुल्लाह का मसला है, इसके अलावा बाकी जो बलूचिस्तान के कुछ नाराज ग्रुप जो वहाँ पर है और फिर जो कौंसलेट हैं इंडिया के और वहाँ से जो राह की एक्टिविटीज है और इस बार की तरफ इशारा चक हेगन ने भी किया था और कि अफगानिस्तान के रस्ते पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है और अब जो शवाहिद सामने आए हैं कराची के ऑपरेशन के दौरान और इसके अलावा जो बरामदा भुगते और बाकी लोग जो इंडिया के पासपोर्ट पर सफर करते हैं तो इन सब चीज़ों नुकात को सामने रखकर पाकिस्तान को बहुत तशवीश है और इस तशवीश से अफगान हुकूमत को और उनको वो जगह बतानी है, वो दूजियत बताने हैं, वो शवाहिद बताने हैं जिसके जरिए पाकिस्तान के कंसर्न है कि इस गैर पाकिस्तान में गैर इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है और जो यहाँ पर अहदाफ लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो ڈسٹیبلائزیشن کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں جو کہ ان کے اپنے جو دفاعی امور کے جو مشیر ہے جو پرائم منسٹر انڈیا کے مودی کے اجیت دول, اس نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کو اور اس قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے. اور تو میرے خیال میں کہ یہ شواہد کافی مضبوط ہیں اور اس بارے میں افغانستان کی مدد اور ان سے کوآرڈینیشن چاہتے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ افغانستان کے جو تحفظات تھے جو کہ آپریشن ضرب عضب کے ذریعے ان کا جواب دیا جا رہا ہے, اس سے بہت کیا جا رہا ہے. اور تیسری بات جو پاکستان نے جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے طالبان کو کہ وہ ایک ٹیبل پر آئے اور افغانستان افغان لیڈ افغان پیس اون پیس جو ہے اس پروسیس کو کس طریقے سے بڑھایا جائے, اور مزید جو پاکستان کی مدد درکار ہے اس کو کس طریقے سے سامنے لایا جائے, اور پاکستان کس حد تک آگے جا سکتا ہے کہ اپنا اثر رسوخ ہے وہ طالبان پر استعمال کر کے ان کو افغانستان کے لیے امن کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے.
اوکے بریگیڈیئر صاحب, تین اہم پوائنٹس مسائل ہم کہیں گے اس کی نشاندہی آپ نے کی ہے جو ممکنہ طور پر پاکستان جو ہے وہ اپنی ان اس ملاقات میں افغانستان کے جو نمائندے ہیں ان کے سامنے رکھیں گے یا ان کے ساتھ زیر بحث لائیں گے. میر ویس افغان صاحب, اس پہ ہم آپ کے کمنٹس لینا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف جو اور پاکستانی فوج کے جو سربراہ دورہ کرنے والے ہیں افغانستان کا, اس میں تین چیزیں جو ہیں تین مسائل کو سامنے لایا جائے گا. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے را, اس کی موجودگی یا اس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ افغانستان میں جس پہ کہ پاکستان کو کافی تشویش ہے, اس کو زیر بحث جو ہے وہ لایا جائے گا. دوسرا پوائنٹ انہوں نے ضرب عضب بتایا ہے کہ اس سے جو فوائد ہوئے ہیں یا جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ زیادہ مطمئن نظر نہیں آتا اس آپریشن سے, اور اس کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے بعد دہشت گرد جو ہیں وہ شمالی وزیرستان سے افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں پر دہشت گرد کاروائیوں میں وہ ملوث ہیں. تیسرا پوائنٹ انہوں نے طالبان مذاکرات کا بتایا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو تین ایشوز ہیں اس حوالے سے افغانستان جو ہے موجودہ حالات میں کیا مدد کر سکتا ہے پاکستان کی, اور کس حد تک یقین دہانی جو ہے وہ کروا سکتا ہے اپنی مدد.
دیکھیے شہناز, یہ تو تین ایشوز جو ہے یہ تینوں بہت بڑی ایشوز ہیں, اور ابھی تک جو بات ہو رہی تھی پاکستان کے ساتھ افغانستان کا, تو پاکستان کی جتنی بھی خواہشات تھے وہ افغان گورنمنٹ میں گورنمنٹ نے گزشتہ 7 مہینوں میں پورا کیے ہوئے ہیں. افغان پاکستان کا خواہش یہی تھا کہ انڈیا کے ساتھ جو ہوا ہوا قرارداد ہے اس کو معطل کیجئے, تو افغانستان نے اسی کو بھی معطل کیا. انڈیا کا خواہش یوں تھا, سوری پاکستان کا خواہش یوں تھا کہ پاکستان کی جو بارڈر پہ جو ڈیور لینڈ پہ افغان صوبے ان میں انڈیا کو کوئی پروجیکٹس نہ دیا جائے, وہ یہ بھی افغانستان نے مان لیا. پاکستان کا کچھ خواہش یوں تھا کہ پاکستانی طالبان جو پاکستان کی حوالے کیا جائے, وہ بھی افغانستان نے مان لیا. اسی طرح کی کچھ اور چیزیں تھے جو آرمی کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھے جو سامنے میڈیا میں نہیں آئی ہوئی, اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے اس پہ موافقہ کیا ہوا تھا. اس کے بدلے میں پاکستان کی افغان گورنمنٹ صرف طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلح کرنے کی خواہش مند تھے, لیکن گزشتہ یہ 7 مہینوں میں پاکستان کی طرف سے واضح طور پہ کوئی اس طرح چیز سامنے نہیں آیا ہوا ہے کہ اسے یہ یقین دہانی ہو سکے افغان گورنمنٹ کو کہ ہاں یہ صلح ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ طالبان جو ہے وہ صلح کرنے کی جو خواہش مند تھے وہ اب کچھ ڈفرنٹ لیول پہ آ چکے ہیں. طالبان نے اپنا راستہ داعش کی طرف موڑا ہے. افغانستان میں داعش تو نہیں ہے, بہرحال وہی کچھ طالبان جو ہے وہ جا کر داعش کے ساتھ اکٹھے ہو کر داعش کے ساتھ لڑتے ہیں یا داعش کا راستہ اپنا لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جہاں تک راہ کی تعلق ہے افغانستان میں, اس میں کوئی شک نہیں, افغان گورنمنٹ نے کئی بار یہ کہا ہوا ہے
कि अफगानिस्तान में कई एजेंसीज इन्वॉल्व है, वो अगर नेटो फोर्सेस की जो कंट्रीज की एजेंसीज है वो भी इन्वॉल्व है, और हमारे खिते और हमारी हमसाया मालिक की एजेंसीज भी वहाँ पे इन्वॉल्व है, ये अफगान गवर्नमेंट का कहना है। वहाँ भी एक अफगान हुकाम ये भी इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI वो भी अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है, तो कल इंडिया उठकर कि वो यही कहेगा कि यहाँ पे ISI इन्वॉल्व है, हम लोग आपके साथ बात नहीं करते। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की ये ख्वाहिश कुछ अफगान
इसमें ज्यादा वजन जो है आपको नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका अमीर वैस अफगान साहब। और आप से मैं ब्रिगेडियर साहब आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि इस वक्त अगर अफगानिस्तान के हालात पर आप एक नज़र दौड़ाएं तो सदर गनी खुद कह चुके हैं कि वहाँ पे दाइश का असर रसूख जो है वो बढ़ रहा है, तालिबान की जानिब से हमले जो हैं उसमें भी तेज़ी हमें नज़र आ रही है, कई मोहलिक हमले वो गुज़श्ता दिनों कर चुके हैं जिससे काफ़ी नुकसान अफगानिस्तान के अफवाज को हुआ है और आम शहरियों को भी हुआ है। ऐसे हालात में अफगानिस्तान पाकिस्तान का अफगानिस्तान से ये मुतालिबात जो हैं ये कहाँ तक दुरुस्त है?
जहाँ तक अफगानिस्तान में ये मौजूदा जो कुछ इंसर्जेंसी में तेजी आई है, तो नॉर्मली स्प्रिंग ऑफेंसिव आता है और हमेशा से, तो अगर आप इनके पिछले भी रिकॉर्ड देख लें तो इन दिनों में तेजी आ जाती है जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और रास्ते आसान हो जाते हैं और फिर इस किस्म के हमले हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब तो नाटो और अमेरिकन फोर्सेज भी नहीं है, तो ये पहला स्प्रिंग आया हुआ है जो कि और इस पर ये हमले। तीसरी बात जो दाइश के तौर पर आपने की उनके कनेक्शन में, तो मेरे ख्याल में कि तालिबान का जो शूरा है या तालिबान का जो तंजीम है और जो दाई हार्ड है या जो लाउमर चलाने वाले हैं वो तो दाइश को स्पेस नहीं देंगे और न वो किसी तरीके से उनको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है और वो इनकी जगह लेगा और इनके नाराज ग्रुप को अपने साथ मिलाएगा। तो जाहिर है कि वो खुद को कमजोर नहीं करना चाहेंगे कि वो दाइश का रास्ता इख्तियार करे, दाइश को इधर कोई स्पेस दे रहे। फिर दो अमीर मोमिनीन नहीं हो सकते या खलीफा नहीं हो सकते, या अबू बकर अब्दुल बगदादी होगा या फिर मुल्ला उमर होगा, ये भी एक लीडरशिप का मसला है। और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दाइश अभी उस लेवल पर नहीं आया है कि वो इस तरीके से, जहाँ पर पाकिस्तान में भी ये जो अभी हेलीकॉप्टर का वो हुआ तो वो भी जो उनके इहसान साहब जो दाइश की तरफ से बोल रहा था कि हमने, हालांकि वो टेक्निकल फॉल्ट था हेलीकॉप्टर का जिसमें कुछ सफारतकार भी मारे गए, तो इस किस्म के क्लेम्स वो करेंगे लेकिन वो क्लेम्स कहाँ तक सही होते हैं, वो एक किस्म का इस नाम को मीडिया में इसको एक प्रोजेक्शन देने के लिए, इसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए और इसकी वजूद का एहसास दिलाने के लिए ये एक प्रैक्टिस होता है जिसको इख्तियार किया जाता है। और मेरे ख्याल में कि हद खाल को होगा उसके कुछ इशारे जरूर हैं जो कि फीरा में भी उसके कुछ इशारे मिले हुए हैं और हमें भी मालूम है, लेकिन इस सतह पर नहीं है कि इतनी बड़ी कार्रवाई कर सके या इस किस्म के।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी और मीर वैस अफगान साहब का भी। इस सेगमेंट का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आइंदा भी आपसे इस इशू पे बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच हमारी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। और सामीन, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें कि हम बात करेंगे यमन के तनाज़े पर, उसके लिए एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया है कामरान बुखारी साहब ने, उनके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। लेकिन उनको हम, कामरान साहब आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रहिए क्योंकि हमें कहा जा रहा है हमने एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके अपना प्रोग्राम हम जारी रखेंगे।
What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
जी جی سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. اور کامران بخاری صاحب, جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ روا ہفتے یہاں ایک اجلاس جو ہے وہ ہونا ہے یمن تنازع سے متعلق. اس اجلاس میں جو سعودی بادشاہ ہیں ان کو بھی, شاہ سلمان صاحب جو ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کرنے سے معذرت کی ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات آپ اس کے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, اس میں دو وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب اور اس کے جو حمایتی ہیں جی سی سی کے اندر, بالخصوص متحدہ عرب امارات, وہ امریکہ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, بالخصوص اوباما انتظامیہ کو, کہ دیکھیں بھائی, آپ جو ہے ایران کے ساتھ اپنی جو ہے تعلقات بڑھا رہے ہیں اور آپ ہمیں بھی بڑے وعدے کر رہے ہیں, لیکن ہمیں آپ کے وعدوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہے, کیونکہ آپ کا جو رویہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیسکلی ہمیں بس کے نیچے پھینک دیں گے. اپنے اس جو انیشیٹو ہے, جو ریپروشمان کا انیشیٹو ہے, جو آپ ڈپلومیٹک ریلیشنز دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران سے, اس سے ہمیں نقصان ہوگا, آپ تو دور بیٹھے ہوئے خطے میں ہم رہتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز جو ہے کہ جو مدعو کیا گیا صدر اوباما کی طرف سے کیمپ ڈیوڈ میں, تو وہ میسج یہ جا رہا ہے کہ دس از ناٹ انف. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ان شاہ سلمان کی بجائے جو ولی عہد ہیں محمد بن نائف, اور پھر شاہ سلمان کے بیٹے جو نائب ولی عہد ہیں محمد بن سلمان, ان کو بھیجا جا رہا ہے. اب اس میں ایک حکمت عملی یہ بھی کار فرما ہے کہ وہ ان لوگوں کو, یہ جو نئی پیڑ ہے, نئی جنریشن ہے, وہ ان کو پوزیشن کر سکیں, ان کو ایکسپیرینس دلا سکیں, اور ان کو پوائنٹ مین جو ہے بیسکلی اس پورے معاملے میں اسٹیبلش کیا جائے. تو یہ دو براڈ حکمت عملی ایسپیکٹس ہیں ان کی حکمت عملی میں.
اوکے, لیکن کامران بخاری صاحب, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہونے کو ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ کیا امریکہ جو ہے سعودی عرب کی طرف سے وہ دباؤ میں, کسی قسم کے دباؤ میں آ سکتا ہے؟
جی, یہی تو مسئلہ ہے کہ دباؤ میں نہیں آ رہا. دیکھیں, اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ دیکھیں اس خطے کے اندر جو ہے ایک بیلنس آف پاور ہونا چاہیے. دیکھیں, امریکہ جو ہے کسی بھی خطے, بر اعظم کو یا خطے کو دیکھتا ہے, اور تاریخی طور پہ یہ بات ہے, تو وہ جب سے سپر پاور بنا ہے 1945 میں, تو وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی بر اعظم کے اندر, کسی بھی دنیا کے خطے کے اندر کوئی ایسی طاقت نہ ابھر کے آ جائے جو اس خطے کو ڈسپرپورشنٹلی انفلوئنس یا ڈومینیٹ یا کنٹرول کر سکے. اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ایک ریجنل بیلنس آف پاور ہو. اب یہ ریجنل بیلنس آف پاور جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا جب صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا 9/11 کے کانٹیکسٹ میں. اب پھر سے جو ہے ایک موقع آیا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک بیلنس آف پاور جو ہے کو اسٹیبلش کیا جائے. تو یہ امریکہ کا پوائنٹ آف ویو ہے. اب امریکہ جو ہے اس میں ظاہر ہے پہلے سعودی عرب کے قریب بہت تھا, ایران کے خلاف تھا, پھر اب ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ جو ہے حالات خراب ہو رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے وہ اس طریقے سے تو there is no going back کہ جی جو پہلے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات تھے ایکسکلوسیولی, وہ تو اب ہو نہیں سکتے. اسی وجہ سے جو ہے یہ ناراضگی اور جو ریزسٹنس اور کھچاؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عرب ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی اوور آل جو پالیسی انیشیٹو ہے کہ جی ایران کے ساتھ تعلقات نارملائز کیے جائیں, اس کے راستے میں کوئی خاص رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں.
اوکے, شاہ سلمان جو ہیں انہوں نے تو معذرت کر لی, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایک سعودی وفد جو ہے وہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہا ہے, یہ بتائیے گا کہ یہ وفد جو ہے سعودی عرب کی جانب سے, یہ اس اجلاس میں کن مسائل کو یا کن مطالبات کو آپ کے خیال میں اٹھا سکتا ہے؟
دیکھیں, بہت سارے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو یمن کا تنازع ہے یہ سعودی عرب حل نہیں کر پا رہا اپنی لائکنگ کے مطابق, تو ایک تو یہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں سعودی عرب یہ چاہ رہا ہے کہ بالکل ایران کا کوئی جو ہے پوزیشن نہ ہو مذاکرات کی میز میں جہاں پر یمن کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ ایک ریڈ لائن ہے جو کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایران کراس کر جائے, کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ جو ہے نا جو عربین پیننسلا کے اوپر جو ہے ایران کا اثر رسوخ ہو جائے گا, کیونکہ وہ ایک مطلب بیسکلی یہ ہے کہ اگر ان کو مذاکرات کی میز پر جگہ مل گئی تو پھر ان کا انفلوئنس بڑھ جائے گا. تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ کسی طریقے سے آپ جو ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی حال ہی میں صدر سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری اور جو وزیر ان کے ہم منصب ایران سے محمد جواد ظریف, ان کے درمیان باقاعدہ جو ہے نا اعلانیہ طور پہ یمن پہ گفتگو ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ये जो सीज फायर हुआ है, अब बाद वो ना चाहते हुए भी सऊदी अरब ये उसको ये करना पड़ा है, लेकिन वो लिमिट करना चाह रहा है कि ईरान का कितना से हो, एक तो ये इशू। दूसरा इशू जो है वो सीरिया है, जहां पर सऊदी अरब ये समझता है कि उनको ईरान को एक बहुत बड़ी गजन पहुंचाने में कामयाब हो सकता है कि अगर सदर बशार अल-असद की हुकूमत का तख्ता उलट जाता है। अब अमेरिका जो है वो जहां ईरान को इतना ताकतवर नहीं देखना चाहता, कमजोर करना चाहता है उसका असर रसूख, और इस पे सऊदी अरब के साथ जो है वो एक हमांगी है, वो किसी भी कीमत पे ये नहीं करना चाहता, खास तौर पे एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कि जहां अगर वैक्यूम क्रिएट होती है सदर बशार अल-असद की हुकूमत के तख्ता उलटने से, तो वहां पे सलफी जिहादी कुव्वतें, दाएश, जबत अन-नुसरा और ऐसी दीगर तंजीमें जो हैं जिनका जो है नाम अभी लोगों ने मशहूर नहीं हुए लोगों के जहनों में, वो उसके सामने आएंगी। ये अमरीका के लिए काबिल कबूल नहीं है।
तो
ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होनी,
जिनको उठाया जाएगा इस इजलास में। कामरान बुखारी साहब, ये जो 5 दिन की जंग बंदी का ऐलान किया गया है सऊदी अरब की जानिब से, और एक पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स जो हैं वो जो होसी बागी हैं उनकी जानिब से आ रहा है, तो ये बताइएगा कि ये जंगबंदी जो है जिस पर अमल दरामद कल होना है, ये एक मुस्तकिल जंगबंदी में बदल सकती है, इसके क्या इम्कानात आप देखते हैं?
अभी तो इम्कानात कम हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत सारे प्री रेक्विजिट्स पूरे होने हैं। देखें, दोनों साइड्स जानती हैं कि वो एक दूसरे को मिलिटेरिली जो है वो दबा नहीं सकते। सऊदी अरब को खुलकर पता है, बल्कि इस पूरी जंग के शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा था कि हम ये जो फौजी कार्रवाई करने चले हैं, इसका मकसद जो है तमाम फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना है, क्योंकि हूती बागी जो हैं वो मेज़ पे नहीं आ रहे। तो कहने का मकसद ये है कि हर दोनों फरीकैन रिलेटिव स्ट्रेंथ से जो है वो बातचीत करना चाहते
हैं। तो सऊदी अरब के मिलिट्री गोल्स जो थे वो सिर्फ यही थे, होसियों को मुज़ाकरात के मेज पर लाना, या और भी इनके मकसद या मकासद थे इस मिलिट्री ऑपरेशन के?
उनका मकसद बिल्कुल यही था, उनका मकसद ये था कि भाई ये बहुत बड़ी फोर्स बन चुके हैं, इनको इतनी बड़ी फोर्स ना बनने दिया जाए, इनको डायल डाउन, इनको वीक किया जाए थोड़ा सा, ताकि जो है ये मजबूर हों कि आके ये बातचीत करें। अगर एक जुमले में अगर मैं ये बयान करूं तो सऊदी अरब जो अंसारुल्ला है, जो हूतियों की तंजीम है, उसको यमन की हिजबुल्ला नहीं बनने देना चाह रहा। तो वो जो है ये उसका गोल था, और जैसे लबनान में हिजबुल्ला के साथ बातचीत करते हैं प्रो सऊदी एलिमेंट्स, इसी तरीके से जो है यमन में भी होगा, लेकिन हिजबुल्ला बहुत ताकतवर है, अंसारुल्ला अभी वहां नहीं है, और सऊदी अरब चाहता है कि वो वहां पहुंचे भी ना।
जी कामरान बुखारी साहब, इस हफ्ते जो मुलाकातें होनी हैं, जो इजलास होने हैं यहाँ अमेरिका में अरब जो रहनुमा हैं उनके और अमेरिकी रहनुमा के माबेन, तो क्या इससे कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रखे जा सकते हैं जब हम यमन तनाज़े की बात करते हैं?
देखें, यमन तनाज़े में शायद कोई जो है पेशरफ्त हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत ही डिसाइसिव किस्म का कोई मरला है, क्योंकि ये एक मरला है। इसमें अब उम्मीद तो यही कर रही थी ओबामा इंतजामिया के शाह सलमान भी आएंगे, ना सिर्फ शाह सलमान नहीं आ रहे, साथ ही साथ सुल्तान काबूस भी नहीं आ रहे ओमान से, जो कि एक बहुत बड़ी वो क्या नाम है मीडिएटर हैं ईरान और जो है गल्फ स्टेट्स के दरमियान, और बिलखसूस इस हूती मसले को लेकर। उसके अलावा जो चूंकि वो अलील हैं मुतहदा अरब अमारात के सदर खलीफा बिन अपना अन्नायान, उनके जो है जानशीन भी आ रहे हैं मोहम्मद बिन जायद, तो जो है ये अब उस तरीके के उस लेवल के मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। तो अमरीका अब रीअसेस कर रहा है कि अब किस हद तक पेशरफ्त हो सकेगी, क्योंकि देखें जो लोग आएंगे वो बातचीत करेंगे, जो बातचीत का निचोड़ होगा उसको वापस अपने अपने दारुल खिलाफा में लेके जाएंगे, और फिर वहां पे फिर से मुशावरत होगी कि भाई अब मजीद आगे पेशरफ्त किस तरह किस जानिब की जाए।
बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कामरान बुखारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। और सामीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म होता है। हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे मोहम्मद अरसलान और इंजीनियर थे रॉब मेकेन। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से शहनाज नफीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com۔